रक्त रुधिर जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। जिसके पास परिसंचरण तंत्र होता है लगभग उनमें रक्त होता है। विकासवादी दृष्टिकोण से यह अनुमान लगाया गया था कि रक्त एक प्रकार की कोशिका से उत्पन्न हुआ था जो फागोसाइटोसिस और पोषण के लिए जिम्मेदार था। अरबों साल बाद रक्त और संचार प्रणाली ने अधिक जटिल जीवन रूपों के विकास में काफी मदद की है। रक्त मूल बातें। रक्त एक विशेष शारीरिक तरल पदार्थ है। इसके चार मुख्य घटक हैं, प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। रक्त के कई अलग अलग कार्य हैं, जिनमें शामिल हैं फेफड़ों और ऊतकों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन, अतिरिक्त रक्त हानि को रोकने के लिए रक्त के थक्के बनाना, संक्रमण से लड़ने वाली कोशिकाओं और एंटीबॉडी को ले जाना, अपशिष्ट उत्पादों को गुर्दे और यकृत में लाना जो रक्त को फिल्टर और साफ करते हैं, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, शिराओं धमनियों और केशिकाओं के माध्यम से चलने वाले रक्त को संपूर्ण रक्त के रूप में जाना जाता है जो लगभग 55% प्लाज्मा और 45% रक्त कोशिकाओं का मिश्रण होता है। आपके शरीर के कुल वजन का लगभग 7-8% रक्त होता है। एक औसत आकार के पुरुष के शरीर में लगभग 12 पाउंड रक्त होता है और एक औसत आकार की महिला के शरीर में लगभग 9 पाउंड रक्त होता है। रक्त के घटक और उनका महत्व। बहुत से लोगों ने रक्त परीक्षण कराया है या रक्त दान किया है, लेकिन हेमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन इसमें इससे कहीं अधिक शामिल है। हेमेटोलॉजी में विशेषज्ञता रखने वाले डॉक्टर हेमेटोलॉजिस्ट रक्त रोगों के उपचार और रोकथाम में हो रही कई प्रगति का नेतृत्व कर रहे हैं। यदि आपको या आपके किसी करीबी को रक्त विकार का पता चला है तो आपका प्राथमिक देखभाल चिकित्सक आपको आगे के परीक्षण और उपचार के लिए हेमेटोलॉजिस्ट के पास भेज सकता है। प्लाज्मा रक्त के तरल घटक को प्लाज्मा कहा जाता है, जो पानी, चीनी, वसा, प्रोटीन और नमक का मिश्रण है। प्लाज्मा का मुख्य काम आपके पूरे शरीर में रक्त कोशिकाओं को पोषक तत्वों, अपशिष्ट उत्पादों, एंटीबॉडी, थक्के बनाने वाले प्रोटीन, हार्मोन जैसे रासायनिक दूतों और प्रोटीन के साथ पहुंचाना है जो शरीर के द्रव संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं, जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स या आरबीसी भी कहा जाता है, अपने चमकीले लाल रंग के लिए जानी जाने वाली लाल कोशिकाएं रक्त में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका है, जो इसकी मात्रा का लगभग 40-45% होती है। लाल रक्त कोशिका का आकार एक चपटा केंद्र के साथ एक उभयलिंगी डिस्क है। दूसरे शब्दों में, डिस्क के दोनों चेहरों पर उतले कटोरे जैसे इंडेंटेशन होते हैं। एक लाल रक्त कोशिका एक डोनट की तरह दिखती है। लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन एरिथ्रोपोएटिन द्वारा नियंत्रित किया जाता है, एक हार्मोन जो मुख्य रूप से गुर्दे द्वारा निर्मित होता है। लाल रक्त कोशिकाएं अस्थि मज्जा में अपरिपक्व कोशिकाओं के रूप में शुरू होती हैं और परिपक्वता के लगभग 7 दिनों के बाद रक्त प्रवाह में छोड़ दी जाती हैं। कई अन्य कोशिकाओं के विपरीत लाल रक्त कोशिकाओं में कोई केंद्रक नहीं होता है और वे आसानी से आकार बदल सकती हैं, जिससे उन्हें आपके शरीर में विभिन्न रक्त वाहिकाओं के माध्यम से फिट होने में मदद मिलती है। हालांकि, जबकि नाभिक की कमी लाल रक्त कोशिका को अधिक लचीला बनाती है, ये कोशिका के जीवन को भी सीमित कर देती है, क्योंकि यह सबसे छोटी रक्त वाहिकाओं के माध्यम से यात्रा करती है, कोशिका की झिल्लियों को नुकसान पहुंचाती है और इसकी ऊर्जा आपूर्ति को कम करती है। लाल रक्त कोशिका औसतन 120 दिन तक ही जीवित रहती है। लाल कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक एक विशेष प्रोटीन होता है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के बाकी हिस्सों तक ले जाने में मदद करता है और फिर शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में लौटाता है ताकि इसे बाहर निकाला जा सके। बड़ी संख्या में लाल रक्त कोशिकाओं के कारण रक्त लाल दिखाई देता है, जो हीमोग्लोबिन से अपना रंग प्राप्त करते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं से बनी संपूर्ण रक्त मात्रा का प्रतिशत हेमाटोक्रिट कहलाता है और ये लाल रक्त कोशिका के स्तर का एक सामान्य माप है। श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, श्वेत रक्त कोशिकाएं शरीर को संक्रमण से बचाती हैं। वे लाल रक्त कोशिकाओं की तुलना में बहुत कम संख्या में होते हैं, जो आपके रक्त का लगभग 1% होते हैं। श्वेत रक्त कोशिका का सबसे आम प्रकार न्यूट्रोफिल है, जो तत्काल प्रतिक्रिया कोशिका है और कुल श्वेत रक्त कोशिका गिनती का 55-70% हिस्सा है। प्रत्येक न्यूट्रोफिल 1 दिन से भी कम समय तक जीवित रहता है, इसलिए संक्रमण से सुरक्षा बनाए रखने के लिए आपके अस्थि मज्जा को लगातार नए न्यूट्रोफिल बनाने चाहिए। न्यूट्रोफिल का आधान आमतौर पर प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि वे शरीर में बहुत लंबे समय तक नहीं रहते हैं। श्वेत रक्त कोशिका का दूसरा प्रमुख प्रकार लिम्फोसाइट है। इन कोशिकाओं की दो मुख्य आबादी है, टी लिम्फोसाइट्स अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं के कार्य को विनियमित करने में मदद करते हैं और विभिन्न संक्रमित कोशिकाओं और ट्यूमर पर सीधे हमला करते हैं। बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी बनाते हैं जो प्रोटीन होते हैं जो विशेष रूप से बैक्टीरिया, वायरस और अन्य विदेशी सामग्रियों को लक्षित करते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाओं के प्रकार आपकी श्वेत रक्त कोशिकाओं में हैं। मोनोसाइट्स, उनका जीवनकाल कई श्वेत रक्त कोशिकाओं की तुलना में लंबा होता है और बैक्टीरिया को तोड़ने में मदद करते हैं। लिम्फोसाइट्स, वे बैक्टीरिया, वायरस और अन्य संभावित हानिकारक आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाते हैं। न्यूट्रोफिल, वे बैक्टीरिया और कवक को मारते हैं और पचाते हैं। वे श्वेत रक्त कोशिकाओं के सबसे असंख्य प्रकार हैं और संक्रमण होने पर आपकी रक्षा की पहली पंक्ति हैं। बेसोफिल्स, जब संक्रामक एजेंट आपके रक्त पर आक्रमण करते हैं तो ये छोटी कोशिकाएं अलार्म बजाने लगती हैं। वे हिस्टामाइन जैसे रसायनों का स्राव करते हैं जो एलर्जी रोग का एक मार्कर है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में मदद करता है। इओसिनोफिल्स, वे परजीवियों और कैंसर कोशिकाओं पर हमला करते हैं और उन्हें मारते हैं और एलर्जी प्रतिक्रियाओं में मदद करते हैं। प्लेटलेट्स, जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, लाल और सफेद रक्त कोशिकाओं के विपरीत प्लेटलेट्स वास्तव में कोशिकाएं नहीं बल्कि कोशिकाओं के छोटे टुकड़े होते हैं। प्लेटलेट्स चोट के स्थान पर इकट्ठा होकर घायल रक्त वाहिका की परत से चिपक कर और एक मंच बनाकर रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया या जमाव में मदद करते हैं जिस पर रक्त जमाव हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप फाइब्रिन का थक्का बन जाता है जो घाव को ढक देता है और रक्त को बाहर निकलने से रोकता है। फाइब्रिन प्रारंभिक मचान भी बनाता है जिस पर नए ऊतक बनते हैं, इस प्रकार उपचार को बढ़ावा मिलता है। प्लेटलेट्स की सामान्य से अधिक संख्या अनावश्यक थक्के का कारण बन सकती है जिससे स्ट्रोक और दिल का दौरा पड़ सकता है। हालांकि एंटीप्लेटलेट थेरेपी में हुई प्रगति के कारण इन संभावित घातक घटनाओं को रोकने में मदद के लिए उपचार उपलब्ध हैं। इसके विपरीत सामान्य से कम गिनती से व्यापक रक्तस्राव हो सकता है। रक्त के कार्य, रक्त के तीन मुख्य कार्य हैं, परिवहन, सुरक्षा और विनियमन। परिवहन, रक्त निम्नलिखित पदार्थों का परिवहन करता है, गैसें अर्थात ऑक्सीजन O2 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फेफड़ों और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच पाचन तंत्र और भंडारण स्थलों से पोषक तत्व शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुँचते हैं। अपशिष्ट उत्पादों को लिवर और किडनी द्वारा डिटॉक्सिफाई या हटाया जाना है। जिन ग्रंथियों में वे उत्पादित होते हैं वहां से हार्मोन अपने लक्ष्य कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। त्वचा को गर्माहट दे ताकि शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद मिल सके। सुरक्षा, सूजन में रक्त की कई भूमिकाएं होती हैं। ल्यूकोसाइट्स या श्वेत रक्त कोशिकाएं हमलावर सूक्ष्म जीवों और कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं। एंटीबॉडी और अन्य प्रोटीन रोगजनक पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। प्लेटलेट कारक रक्त का थक्का जमने की शुरुआत करते हैं और रक्त की हानि को कम करने में मदद करते हैं। विनियमन, रक्त को नियंत्रित करने में मदद करता है। अम्ल और क्षार के साथ परस्पर क्रिया करके पीएच ऊतकों में और उनसे जल स्थानांतरित करके जल संतुलन। अभ्यास 1. रक्त और उसके मूल कार्यों को परिभाषित करें। 2. रक्त की संरचना लिखिए। 3. लाल रक्त कोशिकाओं की व्याख्या करें। 4. रक्त के महत्वपूर्ण कार्य लिखिए और उनकी व्याख्या कीजिए। 5. श्वेत रक्त कोशिकाओं के प्रकार लिखिए।